ओम शांति ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, शक्ति के भंडार, परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को हम रोज सुनते हैं। न केवल मुरली में सुनते हैं, परंतु जो अनेकों के अनुभव हैं, बाबा ने अपने अनेक बच्चों को जो अनुभव कराए हैं, उस अनुभव के आधार के भी गीत बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो अनुभव भी बहुत अच्छी सेवा करता है, अनुभव भी सेवा करता है, और अनुभव वरदान है अथवा भगवान की देन है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मम्मा हमारे पास दिल्ली में आई थी। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, शायद बीए कर रही थी, वही समय था। तो मम्मा जब दिल्ली में आई तो उस समय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी थी और उसका प्रूफ पढ़ने के लिए, करेक्शन के लिए मम्मा को दिया कि मम्मा आप देखो, अगर ये ठीक है तो हम प्रिंट कराएं, क्योंकि हिंदी में हाथ से लिखी हुई थी। तो मम्मा ने मेरे से कहा कि तुमको टाइम है तो मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो जब अभी मम्मा टाइम देती थी, मैं टाइम बना लेती थी, उसी हिसाब से फिर जितना टाइम मम्मा को होता था, 15 मिनट आधा घंटा जो भी, मैं वो पढ़ के सुनाती थी। और उसके बाद मम्मा बहुत ध्यान से सुनती थी और कोई बात उनको चेंज करनी है, एडिशन करनी है, तो बहुत प्यार से टाइम देती थी, नोट करो ताकि उसमें ऐड हो सके। पर बढ़िया बात यह थी कि उसके बाद मम्मा कभी कभी बहुत अच्छी चिट चैट करती थी। उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका भाव क्या है, जगदीश भाई बाबा के महावाक्यों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज्ञान किस हिसाब से हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है अथवा तीसरा नेत्र खोलता है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी इस बात की कि न केवल पढ़ने की बात है परंतु समझने की भी जरूरत है और उसका रस लेने की भी आवश्यकता है। एक दिन अचानक मम्मा ने कहा, सुदेश, यहाँ की जो बहन है, दिल्ली की बात है ये, 1957 में हमने ज्ञान शुरू किया, तो कहा कि वो बहन यहाँ की नियमित बहन क्लास कराने जाती है, वो आज नहीं जा सकती, तुम जाओ क्लास कराने। मैंने कहा, मम्मा मैंने तो कभी क्लास कराया ही नहीं, मैं क्या क्लास कराऊंगी। कहा कि तुम जो मेरे को ये बुक पढ़ के सुनाती हो, ये तुमको समझ में आती है, मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, अच्छा भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि मैं इसी बहाने मैं भी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रही हूँ। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब आप इस पर थोड़ी गहराई में जाते हैं और उसके अनुभव उसका फायदा क्या होगा, ज्ञान का मनुष्यों को संदेश मिले, वो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो मम्मा ने कहा जो बात तुमको समझ भी आती है, अच्छी भी लगती है, तुम समझते हो आपके लिए भी फायदा है, मेरे लिए भी फायदा है, दूसरों के लिए भी फायदे की चीज है, तो उसको दूसरों को बताने में क्या मुश्किल है, अनुभवी तो सुनाना है। क्या आपको आपने जो सुना वो क्या अच्छा लगा? अब मैं गई क्लास कराया, वहां के भाई बहनों ने मम्मा को कहा अगले मंगलवार को भी सुदेश को भेजना। ऐसे एक बारी दूसरे बारी तीसरे बारी मम्मा में डाल दिया समुद्र में तैरने के लिए, समझो प्रैक्टिस तो नहीं थी, पर वो जो अनुभव था जो मम्मा के साथ हमको अंदर का रस मिला और उसी अनुभव से रस से उनको बताया, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमको ये सौभाग्य सेवा का द्वार खुल गया। वैसे कौन, अभी तो मैं कॉलेज में ही पढ़ती थी, कौन किसको क्लास देगा कराने के लिए, परंतु मम्मा का विश्वास और हमारी मम्मा की आज्ञा का पालन करना, हाँ जी मम्मा कह रही हैं, तो मम्मा ने कहा कि कोई अगर सेवा मिलती है तो सिर्फ सेवा नहीं है, सेवा के साथ बाबा शक्ति देते हैं, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और तोते की तरह नहीं सुनाना है, समझ करके उस पर थोड़ा गहराई में जाके अंदर जब उसका रस आपको आ जाए तो वो ही तो सुनाना है। कोई चीज टेस्ट करते हैं तो उसका रस उसका टेस्ट बता सकते हैं, सुना सकते हैं। ऐसे ही बड़ों की विशेषताएं अथवा उनके वरदान अथवा उत्साह और उमंग, हमारी स्थिति ऐसी हो जो हम सुन रहे हैं सुना रहे हैं वो हम सुना नहीं रहे, वो हम प्रैक्टिकल में दूसरों को अनुभव करा रहे हैं अपने अनुभव के साथ साथ। दीदी मनमोहिनी जी जो पहली मम्मा के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, वो सारा दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक, अहमदाबाद से लेकर कश्मीर तक जितने भी सेंटर थे मनमोहिनी दीदी जी संभालती थी। उस समय और सेंटर ज्यादा नहीं थे खुले हुए, पंजाब साइड पर ज्यादा थे, बॉम्बे में था मुख्य स्थान पर दो चार जगह थे, पर इतने विशेष सब जगह नहीं थे। एक दिन दीदी जी को क्लास कराने जाना था, दीदी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, घुटनों में दर्द था, कहा मैं तो नहीं जा सकती हूं, सुदेश तुम जाओ क्लास कराने। मैंने कहा दीदी वो तो बड़ी दीदी आ रही है, बड़ी दीदी आ रही है क्लास कराने के लिए, मेरे को देख के किसको आएगा ये ख्याल कि हाँ ये क्लास कराए। दीदी ने कहा मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी। और जो बाबा ने मुझे टच करना है वो तेरे को टच करेगा। जैसे कुर्सी पर जो भी बैठता है, कहा जाता है कि विकर्मादित्य की कुर्सी पर अथवा विशेष किसी विशेष आत्मा की कुर्सी पर, और वरदान था उस कुर्सी को, जो भी उस कुर्सी पर बैठता था वो समझदारी की बातें और फायदे की बातें क्रियाएं देता सर। तो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी अपनी स्टेज जो है वो आत्मिक स्थिति की स्टेज है, सीखने की भावना है, बड़ों के प्रति हमको रिस्पेक्ट है और बाबा के लिए हमको प्यार है, तो सेवा तो अपने आप ही सामने आती है, मिलती है। सिर्फ हमको उस समय ये देखना है कि मेरी स्थिति कैसी है। तो ये तो बराबर ठीक है, हमको ज्ञान से भी प्यार है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, योग भी बहुत अच्छा लगता है, सेवा का उमंग उत्साह भी बहुत है, सबके संग में रहने का भाग्य भी मिलता है। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, रोज एवरी डे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, कितने टाइटल देते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका प्यार सबसे ज्यादा किसके साथ है? किसके साथ? बाबा के साथ। जो कहते हैं मेरे को सबसे ज्यादा प्यार बाबा के साथ है, हाथ उठाएं। सबसे ज्यादा प्यार बाबा के साथ सबका है बराबर। अच्छा, तो बाबा का जो प्यार है, जो सबको बाबा से प्यार है, तो बाबा का प्यार अनुभव किनको होता है, वो हाथ उठाएं। उसमें कोई कोई बहुत इतना इतना हाथ उठा रहे, कोई लंबा हाथ उठा रहे। बाबा का प्यार, बाबा के प्यार अनुभव करने की विधि क्या है? किस बर्तन में बाबा का प्यार प्रैक्टिकल ठहरेगा? प्यार मुरली के समय तो प्यार अनुभव होता है, मुरली के समय सबको बाबा का प्यार अनुभव होता है, पर बाकी समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जिसको प्यार का अनुभव हो वो हाथ उठाए। ये थोड़े हैं, क्या कारण है? न केवल प्यार ऐसी चीज है जो एक वरदान है, सौगात है, वर्चु गुण है, शक्ति है, और वो परमात्मा की देन है। और इनफैक्ट देखा जाए तो हर एक आत्मा का गुण प्यार ही है। छोटे बच्चे को भी पता है प्यार क्या होता है। तो अभी हम छोटे बच्चे ज्ञान में बेशक अभी चले हैं, नए हैं, छोटे हैं, परंतु प्यार का पता है क्या है, प्यार क्या चीज है। पर सबका प्यार अनुभव हो और सबके प्यार का अनुभव होने के लिए और बाबा का भी प्यार चलते फिरते उठते बैठते परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई हमारा अपमान कर रहा हो, कोई हमको क्रिटिसिज्म का कुछ ब्लेम कर रहा हो, हमारे लिए झूठ बात बोल रहा हो, हमारे लिए थोड़ी जो बात है भी नहीं ऐसी बना के बोल रहा हो, उस उस समय बाबा का प्यारा अनुभव होता है कि बाबा भी भूल जाता है, और जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब है वो बाबा के प्यार को भी भुला देते हैं। तो किससे प्यार होना चाहिए? आपको सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ होना चाहिए? सबसे ज्यादा प्यार अपनी अवस्था से होना चाहिए। अवस्था से व्यवस्था बनती है। अगर मुझे अपनी अवस्था की वैल्यू नहीं है और मैं समझ रही हूं दूसरे मुझे कुछ मदद करे ना, दूसरे मुझे कुछ सहयोग देवे ना, दूसरे कुछ मुझे सिखाए ना, सीखने का दरवाजा ही बंद है, दृष्टि बंद है, कान भी बंद है, मन भी बंद है, सीखेंगे कैसे? मेरी अपनी अवस्था खराब है तो मुझे कोई हीरा भी देगा ना, हीरा भी पत्थर लगेगा, तो मैं अपनी सेवा भी नहीं कर सकती तो दूसरे की सेवा क्या करूंगी? सेवा माना सुख देना, सेवा माना दुआएं लेना, सेवा माना शुभ भावना रखना, सेवा माना एवर से एवर रेडी रहना, सेवा मैंने त्याग की भावना रखना, सेवा मैंने सहन करने की शक्ति रखना। ज्ञानी बनो, वरदानी बनो, सुना था ना ये गीत, गुणों के महादानी बनो। तो मेरे में अगर गुण अपने ही नहीं है तो मैं दूसरों के गुणों को चाहती हूं कि दूसरे के गुण मुझे मिले, दूसरे मेरे साथ गुणपूर्वक का व्यवहार करें। मेरे में अगर अवगुण है तो दूसरा का अवगुण ही मेरे पास बात करने आएगा, गुण बात करने नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का स्वभाव स्वभाव को खींचता है। मेरी अवस्था सेंसिटिव है तो दूसरे बात ऐसी करेगा जो वो भी सेंसिटिव वातावरण बन जाएगा। मैं मजबूत हूं तो कोई बात नहीं, कही भी सही। तो स्टेज मेरी अगर पावरफुल है और वो स्टेज मेरी स्टेज अनशेकेबल है तो फिर मैं थोड़ा भी सुनाऊंगी वो दूसरों पर को टच करेगा, उनको फायदा मिलेगा। बाबा ने कहा था कि ये तुम बच्चे सेवा जो करते हो ये तो ज्ञान डांस है, संस्कारों का मिलन है, अपने संस्कार भी, अपने विचार व्यवहार और संस्कार सुंदर रहे यही सेवा है। विचार संस्कार और व्यवहार अगर दिव्य हैं ये सेवा का द्वार खोलते हैं। तो चेक करें मेरे मन में विचार किस तरह के चल रहे हैं। बाबा कहते हैं मन से सेवा करो, और मेरे मन में पता नहीं क्या क्या तूफान चल रहे हैं। मेरे मन में विरोध क्रोध घृणा नफरत वो बैठे हैं तो मन क्या सेवा करेगा? अपने को भी दुखी कर रहे हैं तो दूसरे को दुख के वाइब्रेशन भेजेंगे ना। तो देखना है कि मेरी मनसा कैसी है। चलो ठीक है, मनसा कैसी भी है फिर भी हिम्मत रखी, ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु स्टेज जो रियल होनी चाहिए डिटैच सोल कॉन्शियस की, बाबा के साथ योग युक्त होकर के रहने की। मेरी स्टेज डामाडोल होती रहती है, हिलती रहती है, तो एक डांसर बहुत अच्छा डांस कर रही है स्टेज पर, डांस बहुत फर्स्ट क्लास है, पर स्टेज हिल रही है। अभी आप सोचे डांस तो अच्छा है, पर स्टेज जब वो तख्ता है वो हिल रहा है, किसको आनंद आएगा डांस का? अच्छा लगेगा? उनका ध्यान डांस में जाएगा? बेचारी गिर न जावे, अरे स्टेज हिल रही है, गिर न जावे। तो ऐसे अगर मैं सेवा का मुझे चांस भी मिलता है और मेरी स्टेज ऐसी है, तो दूसरों को मेरी चिंता हो रही है कि मैं गिर न जाऊं, परेशान हो रही हूं, दुखी हो रही हूं, मैं सेवा क्या करूंगी। तो ये अगर ध्यान रहे तो सबसे ज्यादा बाबा से प्यार का अनुभव उनको होता है जिनकी अवस्था आत्मिक स्थिति में स्थित है और हृदय से स्वस्थ है, बीमार नहीं है, मतलब परेशान, दुखी, चिंता, रोना, घबराना, ये बीमारी है, स्व में स्थित नहीं है। हृदय स्वच्छ भी हो और स्वस्थ भी हो तो अपने आप से देखे कारण क्या है कि बाबा का प्यार चलते फिरते उठते बैठते अनुभव नहीं होता। उसमें प्यार बाबा दे रहा है, पर अगर आप देखो दूध भरा बहुत बड़ा मटका दूध का है, आपने दूसरे मटके में डाला, वो मटके के अंदर कुछ खटाई पड़ी हुई है, वो कल वाला दूध परसों वाला दूध अभी तक उसी में पड़ा है, या वो दही पड़ी है उसमें। अब आपने मटके का दूध दूसरे मटके में डाला, खट्टा हो जाएगा ना। दूध तो अच्छा था पर मटका मैला था। तो अगर मेरा मटका, मन का मटका कहीं भटका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, कहीं ब्लॉकेज है, कुछ लीकेज है, तो कोई मुझे अच्छी बात भी सुना रहा है, मेरी अवस्था अपसेट है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी बात भी बुरी लगेगी। तो इसीलिए सेवा में अपनी सेवा भी अगर नहीं कर सकती, कर सकता तो दूसरे की सेवा क्या करूंगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए मुझे सबसे बड़ी बात अपनी अवस्था से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, मेरी अपनी अवस्था ठीक रहे। इसलिए स्वस्थिति यानी स्वयं की स्टेज, जब मेरी अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था अच्छी है, अवस्था अच्छी नहीं है तो मुझे कोई भी सेवा मिलती है उसमें अव्यवस्था ठीक नहीं होगी, या तो मैं हिम्मत नहीं रखूंगी, या फिर मैं कुछ न कुछ नुक्स निकालूंगी, या कोई न कोई बहाना करूंगा, या कोई ऐसा काम फटफट किया जो बिल्कुल मन से किया ही नहीं, वो व्यवस्था नहीं है। अवस्था ठीक नहीं है तो व्यवस्था भी ठीक नहीं होती, यानी उसकी जो सेटिंग है उसको ठीक स्थिति से कर्तव्य को करना चाहिए वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए सेवा तो रिजल्ट है हमारी अवस्था का और बाबा के साथ योग का। सेवा तो एक सौगात है, जितना जितना हम आत्माओं के अंदर एक भावना है सुख देने की, तो वो अपने आप ही सामने आती है, तो दूसरों से मिलती है, सेवा करने का चांस मिलता है। ड्रामा माँ वो सौगात दे देती है। बाबा शक्ति देता है, अपनी समझ जो है वो स्थिति जो है वो सेवा करा लेती है। बाबा से भी प्यार मिलता है और सेवा से दूसरों की दुआएं मिलती हैं। इसीलिए सेवा देखा जाए तो रिजल्ट है, सेवा पहला सब्जेक्ट नहीं है। पहला सब्जेक्ट है स्वदर्शन, अपना दर्शन करना, सोल कॉन्शियस रहना। हमारी पढ़ाई के चार सब्जेक्ट कौन से चार सब्जेक्ट है, वो किस चित्र में दिखाए हैं? ये जो हमारे चार सब्जेक्ट हैं, वो हमारे चित्रों में से जो हम एग्जीबिशन करते हैं, उस एग्जीबिशन में कौन से स्टॉल में ये चार सब्जेक्ट दिखाते हैं? जो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य, आज बाबा ने यही कहा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कमाई अच्छी तरह से करेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे तो जॉब अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो पोजीशन अच्छी मिलेगी, वो तो रिजल्ट है ना। सेवा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, हम पहला सब्जेक्ट सेवा कर रखना चाहते हैं। मुझे सेवा मिलनी चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरे को डिपार्टमेंट या कुछ मिलना चाहिए। पर पहला सब्जेक्ट है मेरी स्थिति कैसी है। अपने आप को बार बार चेक करें, मेरी अवस्था व स्व स्थिति कैसी है। मैं स्वस्थ हूं तो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। पर किस चीज का ज्ञान? ज्ञान तो पहले पहली बात तो मैं अपने आप का, मुझे ज्ञान है। कहेंगे हाँ क्यों नहीं, अभी तो पता है ना मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर ज्ञान जो मैं आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं? ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान का मेरा स्वरूप से ज्ञान नजर आता है। बाबा ने कहा है जो असली सेवा, फाइनल सेवा है, वो कैसी सेवा है? कहीं भाषण जाके करें, क्लास करावें, कोर्स करावें, वो है सेवा? कौन सी सेवा है वो? लास्ट सेवा है चेहरे और चलन से सेवा, दृष्टि और मन से सेवा, बोलने की सेवा नहीं है। तो अपने आप को देखिए कि मैं, मेरा जो आंतरिक स्वरूप है, अंतर्मुखी होकर के अपना मुख देखे। मैं अगर मेरी अवस्था बाहर मुखी है तो मैं दूसरे को देख रही हूं, वो बोलता कैसे है, गुस्सा कर रहा है, उसकी दृष्टि कितनी खराब है, निंदा कर रहा है, हम उनका चेहरा मैं देख रही हूं, अपना दर्शन तो कर ही नहीं रही हूं। अपना तो मैं प्रदर्शन कर रही हूं कि मेरा किसी अज्ञान का असर मेरे पर ना होवे। मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं तो दूसरे जो मुझे, मेरे साथ अभी व्यवहार कर रहे हैं, वो तो देहभान में कर रहे हैं या कोई ना कोई कमी अथवा कमजोरी के कारण कर रहे हैं। तो मैं अपना बचाव कर सकूं, आग लग रही है तो मैं सीधा ही आग में कूद जाऊं, बुझाऊं उसकी आग, क्या होगा? सीधा ही अगर आग में आग बुझाने के लिए कुछ दिन बचूंगी, मेरे को भी आग लग जाएगी, तो क्या करना है? अपनी सेवा करनी है पहले, उस समय अपनी अवस्था को, अपने आप को ठीक रखने के लिए, फायर को बुझाने के लिए पहले फायर प्रूफ ड्रेस पहननी पड़ेगी ना। स्वस्थिति से पहले स्वयं की सेवा है, पीछे दूसरे की सेवा है, क्योंकि अपनी अवस्था को बनाना है ना। तो खाली फायर प्रूफ ड्रेस की बात नहीं है, आग बुझ जाए दूसरी चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो बाबा जो ज्ञान का सागर है, जिसको ज्ञान जल भी कहते हैं, पर बाबा कहते हैं मैं तो अमृत दे रहा हूं, तो ज्ञान सागर बाबा की ज्ञान को प्रैक्टिकल में आग पर डालेंगे तब आग बुझेगी ना। कि ज्ञान कहीं और रखा है, आग यहां लगी हुई है, मैं उसमें कूद रही हूं, ज्ञान मेरी नोटबुक में है, ज्ञान मुरली में पड़ा है, ज्ञान मेरे पास जहां मुझे जलन की महसूसता हो रही है वहां ज्ञान चाहिए ना। तो स्मृति रहे, अवस्था को स्थिति को बनाने के लिए, स्वस्थिति को बनाने के लिए पहले स्मृति चाहिए। सेवा बड़ी बड़ी सेवा पीछे होगी, चैरिटी बिगिन्स एट होम। मैं अपने आप की सेवा कितनी कर रही हूं। एक बारी कन्याओं का क्लास चल रहा था, मामा दिल्ली में थी उस समय, तो किसी ने कहा मामा मैं सेंटर पर तो रहती हूं पर बहन दूसरों को तो देती है सेवा करने के लिए, मैं तो सिर्फ कर्मयोगी करती हूं, सेवा का तो चांस नहीं है। मम्मा ने कहा और दूसरी बात फिर ये कि कोई ज्यादा लोग तो आते भी नहीं है सेंटर, कोई ज्यादा जिज्ञासु भी नहीं आते, मैं क्या सेवा करूं? तो मम्मा ने कहा तुम अपने किराएदारों की सेवा करो, किराएदारों को कोर्स कराओ। उसने कहा मम्मा हम तो सेंटर पर रहते हैं, सेंटर पर तो कोई किराएदार नहीं है, सेंटर पर तो हम ही रहते हैं, बहनें रहती हैं, हम रहते हैं। मामा ने कहा नहीं, जिस मकान में तुम रहती हो ना उसके किराएदारों को सेवा कर, उनकी सेवा करो। मामा मैं वो सेंटर वाले मकान में ही रहती हूं। मामा ने कहा तुम्हारा ये शरीर एक मकान है, करेक्टर बिल्डिंग के लिए ही बाबा ने तुमको अपना बनाया, तो इसमें ये जो तुम्हारी आंखें हैं, कान है, जबान है, कर्म इंद्रियां हैं, तुम रोज इनको कोर्स कराओ। इसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और कोई जिज्ञासु हो ना हो, सबसे ज्यादा जिज्ञासा तो तेरी कानों को है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा तेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा तेरी आंखों को उससे भी ज्यादा है, इधर देखा उसने देखा क्या किया कैसे किया, उससे ज्यादा बिजी तेरा माउथ है, मुख है। तो ये जो टेम्पररी जो मिली हुई कर्म इंद्रियां हैं, अंतर्मुखी हो करके इनको कोर्स कराओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी, क्योंकि बाहर तो दुख ही दुख है ना, दुनिया ही दुख की है। जब अंतर्मुखी होंगे और तुम फिर अपनी सेवा करनी शुरू करोगी तो तुमको खुशी का अनुभव होगा कि तुम सेफ रही। बराबर परिस्थिति तो ऐसी थी, वो तो परिस्थिति थी ना, अवस्था तुम्हारी क्यों बिगड़ी? कहते परिस्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, वहां वातावरण ही सारा दिन गॉसिप का है। अरे उस गॉसिप का तो तेरे कान इंटरेस्टेड है ना सुनने के लिए, तेरे कान में पड़ी निकाल दे, या सावधान हो जा कि इस बात को मुझे सुनना ही नहीं, रिपीट अंदर करना ही नहीं है। तो अपने आप को कोर्स कराओ, अपनी कर्म इंद्रियों को, मामा ने कहा अपनी ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को कोर्स कराओ, क्योंकि ये तो तुमको सिर्फ इस मकान में जब तक यहाँ हो, शरीर में हो तब तक है, बाद में तो ये मकान छोड़ोगी ना, बदली करोगी ना मकान, जो 80 मकान लिए हैं, घर बदली किए हैं, तो इनको इतना श्रेष्ठ बनाओ जो ये संस्कार तुम्हारे सतयुग में जाएं। कहा कि मम्मा पता नहीं क्या होता है, उनका प्रभाव मेरे में पड़ जाता है, मैं नहीं चाहती पर उनका प्रभाव मेरे में पड़ जाता है मेरे पर। मम्मा ने कहा क्यों पड़ता है? आग का प्रभाव तेरे पर क्यों पड़ा? आग पर पानी डालो तो आग बुझेगी ना, आग पर पानी डालो आग बुझेगी, और पानी में आग डाले कोई तो भी आग बुझेगी। तो तुम्हारा हाथ क्यों जला, मन क्यों जला, क्या कारण है? पानी तक का गुण तू अगर शीतला देवी है, शांत स्वरूप आत्मा है, पहला सबक तो यही है ना, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो देखो कि मैं अपने मटके को रोज साफ करती हूं। दादी जानकी जी ये बहुत मिसाल बताती थी कि पुराने जमाने में ठंडा पानी हमको पीना होता था, कोई बोतल फ्रिज में नहीं रखते थे, मटके होते थे, ये मिट्टी के ही मटके, उसको रोज उसमें पानी रखते थे, पर रोज मटके को अच्छी तरह से साफ करते थे। कल वाला मटका पानी का पूरा हुआ, खत्म किया, आज अच्छी तरह से साफ किया, पानी मीठा लगता था। कल वाला मटके में कुछ रहा, उसका असर आज के मटके में आ जाएगा। तो कहती दादी कहती थी मैं तो सवेरे रात को सोने से पहले देखती हूँ मेरे मटके में कोई मिट्टी तो नहीं आ गई है, मेरे मटके में कोई उड़ता उड़ता कख तो नहीं आ गया है, कोई उड़ती उड़ती मक्खी तो नहीं गिर गई है। मैं तो अपना मटका रात को साफ करके सोती हूँ। तो फिर बाबा मेरे मटके में अच्छी तरह से ज्ञान भर देते हैं। पर सोते समय भी अगर मैंने दिन भर भी चेक करो बार बार कि मटका स्वच्छ है, मटकी स्वच्छ है, जो मक्खन उसमें रख सको, मंथन की बात रख सको, दूध नहीं फिर तो बाबा मथन मक्खन देगा ना, उसके लिए चुपचाप पुरुषार्थ चाहिए, मक्खन चोर। क्या मतलब है? कि अवगुण नहीं उठाओ किसी के, उनके अंदर जो गुण हैं वो चुपचाप लेके अपने अंदर रखो, अवस्था खराब नहीं होगी। क्योंकि अवगुण उठा लिया, वो सुना ना गीत, गुणों के मोती चुनो हंस बन के, और मैं हंस तो रही पीछे बात, मैं तो कौआ बन करके कां 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 फलाने, इसने ये किया इसने ये कहा, मैं कौआ बन गई, हंस कहां से चुगू, मोती कैसे चुगूंगी। मुझे याद है 57 में जो मुरलियां चलती थी, जब मेरा उस समय जन्म हुआ रूहानी जन्म, तो बाबा की जो मुरलियां चलती थी उसमें याद प्यार के बजाय, अभी है मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते, उस समय था आसुरी कौओं वाले पंख निकाल, आसुरी कौओं वाले पंख निकाल, देवी मोर पंख धारण करने वाले मोर मुकुटधारी बच्चों को, होली हंस बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अपनी अवस्था में देखे अपना अंतर्मुखी होके कि मैं कौआ कितने समय रही और मैं हंस कितने समय रही, मेरी अवस्था जो है कहाँ, मैं कैकई कितना बनी और मथुरा मंथरा कितनी देर बन गई। अंतर्मुखी होकर के देखे, मन थरथर कर रहा है, इसने ये किया इसने ये किया, वो अंदर फटक रहा है मन। फिर कई रानी क्या कही, किस क्यों कही, कैसे कही, वो रानी बन के कंट्रोल करेगी दूसरे पर। वो मंथरा और कई मिल गई तो जो अकल राज मिल रहा था, राज तिलक होने वाला था, कल राज मिलने वाला था, क्या हो गया, कारण क्या हुआ, वो 14 साल डिले हो गया। 14 साल डिले हो गया, मिला तो राम को ही राज्य। तो वो जो राजयोग सीख करके मैं राजा बनने वाली थी, सतयोग के बजाय त्रेता में आके राजा बनी, 14 कला बनी, 14 साल डिले हो गई। राज्य जो मेरे को मिलना था वो मुझे नहीं मिला, सूरजवंशी के बदले चंद्रवंशी बनी। तो मुझे आत्मा का ये मुझे अपना दर्शन करना है, मैं आत्मा किस स्वरूप में स्थित हूं, भले मैंने पुरुष का चोला लिया है स्त्री का चोला लिया, मैं आत्मा क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या देखती हूँ। इसीलिए जितना जितना अंतर्मुखी होंगे तो अंतर मन शुद्ध और श्रेष्ठ होता जाएगा, अवस्था हर्षित मुख रहेगी, तो चेहरा ही सर्विस करेगा, दृष्टि में दया भाव क्षमा भाव होगा तो अपनी सेफ्टी होगी। परंतु क्यों उसका असर पड़ा, मम्मा ने कहा अच्छा पूछो अपने आप से, पानी जो है वो आग पे पड़ा तो भी आग बुझ गई, आग पानी में पड़ा तो भी आग बुझ गई। तो तेरे अंदर ये घात जलाने का कारण क्या हुआ, दिल जलने का कारण क्या हुआ। कहा मामा वो आग की तरह थी ना, पर कहा क्यों जली, तुम पानी का, पानी पावरफुल है कि आग पावरफुल है, क्या बात है। रोज हमारे हाथ साथ भी यही कहानी होती है ना, वे पानी का सोचो, पानी का गुण जो है ठंडा है शीतल है। अब यही मैंने चाय बनाई, दूध अच्छा मीठा है, मैंने बनाया फौरन उबलने लगा, अब मैंने हाथ डाला हाथ जल गया, क्या कारण है, क्यों हाथ चला, पानी ने अग्नि का गुण क्यों ले लिया, क्या कारण है, पानी ने अग्नि का गुण क्यों ग्रहण कर लिया जो हाथ जलाने वाला बन गया। बीच में बर्तन आ गया, समझ आई बात, सीधा पानी आग पर नहीं गया, वो बीच में पतीला आ गया, पतीले ने पानी गर्म कर दिया। तो ये मेरा देह का भान, जा दूसरे की अग्नि का मुझे तब असर हुआ जब मेरा देह का भान वो पतीला बीच में आ गया। तो मैं अपने आप को देखूं, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूं, पहला लेसन पक्का है। स्व स्थिति में तो आत्मा की स्थिति की बात है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान का स्वरूप बनने का है। जितना जितना ज्ञान को मैंने यूज किया और बुद्धि में वो बैठा, तो मन और बुद्धि दोनों बाबा के साथ जुट जाएंगी, वो सेवा ऑटोमेटिकली, मेरी सेवा भी हो रही है, दूसरों की सेवा भी हम कर रहे हैं। स्वस्थिति की बात है ना। अब जिस जात जिस आत्मा को जो सेवा करनी है वो एक करेगी, सबका ध्यान वह क्यों गया? काम एक का है और हम सब ने भी वही काम किया। एकाग्रता में मुझे, मैं मेरा ध्यान कहाँ रहे? हाँ, जिनका कनेक्शन है, कंसर्न है, ध्यान रखेंगे तो मुझे भी अपने स्वरूप में। देह का भान अगर मेरे को आया तो अभिमान जरूर आएगा। देह का भान मेरे को आया तो मुझे छोटी छोटी बात में किसी ने कुछ कहा, मुझे इंसल्ट लगेगी, अपमान लगेगा। देह का भान एक तरफ अभिमान लाता है, दूसरी तरफ से अपमान महसूस कराता है। मेरी कोई इज्जत थोड़ी रखते हैं, मेरे को तो ऐसे ही समझते हैं फालतू। तो स्वमान में नहीं है अगर, तो अवस्था खराब होती है। तो स्वमान का मतलब यह नहीं कि मुझे इज्जत मिले। स्वमान है आत्मा, अब तू मान ले तू भगवान की संतान है, तेरा गुण शांत स्वरूप है। शेर का बच्चा शेर होएगा कि बकरी होएगा? शेर का बच्चा तो शेर ही होएगा ना। तो मैं किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिवान की संतान, शांति के सागर की संतान हूं। तो मुझे पहले अपनी सेवा करनी है, अपनी अवस्था को ठीक करने की। मेरा योग लगेगा बाबा के साथ। दूसरा सब्जेक्ट है योग, जिससे मुझे शक्ति मिलेगी। अवस्था खराब है, योग ही नहीं लगता, क्या करूं? बाबा को याद करती हूं तो दूसरा वस्तु याद आ जाता है। बाबा की बातें याद करना चाहती हूं तो उसके शब्द याद आते हैं। क्या कर रही हूं मैं? योग किससे लगा रही हूं? स्वप्न में भी उनके साथ योग लग जाता है, उनकी बातें सोचते, सोते समय भी वही, उठते समय भी वही याद आया, योग कहाँ लगा? इसलिए ज्ञान स्वरूप पहला सब्जेक्ट, जब मैं शुद्ध आत्मिक स्थिति में, स्व स्थिति मेरी स्वस्थ है, श्रेष्ठ है, सातों ही गुण मेरे काम कर रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार तीनों एक लेवल पर है, गुणवान भी हूं तो गुणदान भी कर रही हूं, गुण स्वरूप भी हूं, तो पहले जितने जितनी स्वस्थिति है, चलते फिरते उठते बैठते, मेरा जो श्वास होगा ना वो वायुमंडल को बदलेगा, संकल्प होगा वो शीतल जल डाल देगा। फिर सेवा तो बहुत है, सेवा तो पीछे पीछे आती है, क्योंकि वो स्वस्थिति धारणा है ना। तीसरा सब्जेक्ट है कमल के फूल की तरह न्यारा रहना। अब मैं कहूं कीचड़ नहीं होगा ना, तब मैं खिली रहूंगा। कीचड़ है ना, इसीलिए मैं खुश नहीं रह सकती। सारा दिन कीचड़ ही बोलते रहते हैं, तेरी मेरी निंदा ही करते रहते हैं। अरे कीचड़ है तो तू कमल बनना। स्वमान में अपने आप को टिकाओ, जब वो कमल बनेंगे तब गुलाब का फूल बनेंगे। गुलाब का फूल के साथ कांटे होते हैं, पर गुलाब खिला रहते हैं। जब तक मैं कमल का फूल नहीं बनी, कांटों के साथ रहते मैंने अपने स्वरूप को शुद्ध शीतल नहीं रखा, तो जिस स्थान पर मैं हूं उस स्थान की सेवा भी नहीं है, मेरी सेवा भी नहीं है, दूसरों की सेवा पर भी का प्रभाव थोड़े वक्त का पड़ेगा, फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी अवस्था खराब है। तो वो बेचारे कहेंगे तो बड़ी दुखी है, बहन को कुछ भाई को कुछ मदद करनी चाहिए। वो समझेंगे सेंटर ऐसा है, टीचर ऐसी है, ये ऐसा है, मैंने डिसर्विस की या सर्विस की। इसलिए इम्पोर्टेंट है योग की भट्टी में मैं अपने आप को इतना शुद्ध बनाऊं, संकल्प मेरा इतना श्रेष्ठ हो। हाँ, समझ है मुझे कि ये खराब बात है, मैं उसको धारण नहीं करूं। पता है ये खड्डा है, दूसरा खड्डे में गिरा है, मैं उस खड्डे में नहीं गिरूं। दूसरे का हाथ जले, मैं हाथ नहीं जलाऊं। एक बारी टाइम होता है, लास्ट बात सुनाती हूँ। मैं उस समय शायद 21 साल की थी, दिल्ली में ही थी, रजौरी गार्डन में। तो अखबार वाले, क्योंकि वो मेन सेंटर था, बाबा मामा वहीं आते थे, तो रिपोर्टर कोई ना कोई कभी कभी रिपोर्ट कुछ लेने न्यूज़पेपर वाले आते थे। एक भाई था न्यूज़पेपर वो लेने का, हमारा आया, कहा तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, पवित्रता की जीवन, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य में रहना, ये भगवान की शिक्षा है, तुमने कोई दूसरा जीवन देखा थोड़ी या अनुभव थोड़ी किया है, अनुभव करो पहले तो फिर पता चले भाई दुख का है या दुख है या नहीं है। मैंने कहा मेरी, मैं आपसे एक बात पूछूं, कहा मैंने कहा कि आपने देखा किसी का हाथ आग में पड़ गया, भूल से भी आग में हाथ जल गया, तो हाथ सचमुच जलता है? वो कहता है जल गया। तो सचमुच जलता है कि नहीं, आप आग में हाथ डालोगे? कर नहीं, मैं देख रहा हूं ना उसका हाथ जल गया, मैं हाथ क्यों डालूंगा। तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स, मेरी कजन, मेरे कॉलेज की फ्रेंड, कोई भी ऐसी नहीं है जो कहती है मैं बहुत खुश हूं। वो कहती है धोखा हो गया, मैंने भूल कर दी। तो सब चीजें जरूरी थोड़ी है कि अनुभव करके आपको फायदा करना है, जहर खा के देखो मैं मरता हूं कि नहीं मरता हूं, आग में मैं कूद के देखूं मैं जलता हूं कि नहीं जलता हूं। विकारों की अग्नि जलाती है, दूसरे को मैं देख रही हूं, फ्रेंड्स को देख रही हूं, कजन्स को देख रही हूं, तो समझदारी क्या है? भगवान जो कहता है वो सच बात है और उसमें शक्ति भरी हुई है। तो इसीलिए धारणा ही जो है वो सेवा ऑटोमेटिकली है। चुप हो गया, फिर तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर लिखा कि ब्रह्मा कुमारी का जीवन पवित्र जीवन, सृष्टि को पवित्र बनाते हैं। मैंने कहा ज्योत जगी हुई तो ज्योत जगाएगी, बुझी हुई ज्योत क्या किसी को जगाएगी। हमने सुख का अनुभव किया है, हमने आनंद का अनुभव किया है, और ये इस डिसिप्लिन के कारण ही सुख और आनंद का अनुभव है, कोई मनुष्यों को कराना चाहते हैं, इसलिए हम डिटरमिंड है अपनी धारणा पर। तो सेवा तो अपने आप हो गई ना, तो धारणा से सेवा होती है, शब्दों की बात नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है स्वस्थिति से स्वयं की सेवा, सेंटर की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, ऐसे सेवा की बाप को प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाप कहता है मैं भी सेवाधारी हूँ और हम भी सेवाधारी हैं। सेवा तो फिर बहुत मिलेगी, जो टाइम ही नहीं होगा कि इतनी सब सेवा कर सके। मेन बात है हम चारों ही सब्जेक्ट जो विष्णु के हैं, जो आज बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तो चार अलंकार जो विष्णु जी को दिखाए हैं वो हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान स्वदर्शन चक्र, गदा योग की शक्ति, कमल का फूल धारणा और शंख सेवा। तो जो भी हम बोलेंगे उनको सुख मिलेगा, समझ मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली बाबा का संदेश दे सकेंगे। ओम शांति। टाइम के हिसाब से पूरा।